તારીખ 9/3/1993 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા દર્શન મોહના વિષય ઉપર સોનાગીરીમાં ચર્ચા સળંગ નંબર 3
મંદ કે વિના વસ્તુ સ્વભાવ ખ્યાલ મેં નહીં આવ્યો. જ્ઞાન મેં જ્ઞાન સ્વભાવ જો ખુદ હૈ તો જ્ઞાન ક્યુ નહીં જાનતા અપને રહા જો જ્ઞાન રહા જ્ઞાન ખુદ વચન હો ગયા મહિતા હૈ તો એસી હૈ કે અપને સ્વભાવ કો જાનને મેં દેતા. जिन मनुष्य का दर्शन होता अनुभव करता है उसे ही स्वभाव का यथार्थ निश्चय होता है. और दर्शन का अभाव ये बिना यानी कुछ मेरा अभाव हो जाता है, लेन नहीं रहता
है.
इसके बिना अनुभव का नहीं, जब ये मंद होते होते अभाव हो जाता है દૂસરે દોષો કે પરિણામ પર હમ દેખ કરકે મિટાને કે લીધે પ્રમુખ મુખ્યતયા हमारे शक्ति खर्च करते हैं
जी,
बजाय इसके हमें हमारे दर्शन मोह को सबसे पहले सूक्ष्म होने योग्य करना चाहिए. मंद करते करते सूक्ष्म होने योग्य हो गए तभी अनुभव होगा. यही एकमात्र उपाय है मैं योग का દર્શન હોતે જો અપને પરિણામ હોતી હતી વાત અપને પરિણામ હોય જે દર્શન ભાવ રૂપ હૈ ઉસકી મંદતા હોય બિના ઉસકી શક્તિ કમ હોય બિના જ્ઞાન મનુષ્ય કી ભૂમિકા કા નિર્મળતા કો પ્રાપ્ત નહીં હોગા કે જિસ નિર્મળતા મેં અપના સ્વભાવ જલ કે દર્શન મેળા હોતા હોય તો ઉસમે મુખાકૃતિ નહીં દિખતી. નિર્મળ હોતા તો ઉસમે અપની મુખાકૃતિ દિખતી હૈ. કે દર્શન મેં એક એસા મલિન પરિણામ હૈ કે જિસ કારણ સે જ્ઞાન મેં અપના સ્વભાવ જ્ઞાન ખુદ નહીં જાનતા. ये बड़ी विसंगना है. तो मुझे ये कहते हैं कि दर्शन के परिणाम में से रक्त तुम्हारा सूचना के लिए अनुभव को भाव में रक्त कहो या इसकी शक्ति कहो दर्शन की शक्ति कहो वो ये भजन ये उत्तम होता है या अभाव होता है अनुभव परिणाम हो गया है तो उस वक्त अनुभव होता है उसके पहले अनुभव नहीं होता. આત્મભાવના થી તીવ્ર રુચિ કે સાથ હી વર્તમાન મે અસ્થિર પરિણામો થી યોગ્યતા કે સમય સાધક કી ભૂમિકા ક્યા હૈ. ભૂમિકા ક્યા હૈ મતલબ કે ભૂમિકા મે ક્યા હોના ચાહિએ કે અભિપ્રાય હૈ અભિમાન કા. આત્મભાવના થી તીવ્ર રુચિ હોતી હૈ तो वर्तमान में जो परिणामों की अस्थिरता है उसमें सबको नहीं होना चाहिए कि भूमिका में जो भी विभाव कल्याण है उसमें जो विभाव रख आत्मभावना और आत्मरक्षे कारण से उसमें मोक्ष का नहीं चाहिए। कोई साल दूसरी साल 80 से लेकर 33 साल से है तो ये अपने आत्मभावना की रुचि का कार्य कर रही है। तथा नेगेटिव साल कौन सा कौन सा है तो उसमें जो परिणाम फिर नहीं है अपना इसलिए अच्छी है दया जाएंगे बेटे साथ जाएंगे लेकिन उसमें रक्त को जहाँ रुचि है वहाँ ही रस रहता है जहाँ रुचि नहीं है वहाँ नहीं है उसी रुचि के लिए परिणाम है उसकी भूमिका निरस्त परिणाम की भूमिका में जो आगे बढ़ने का प्रतिबंध था वो निकल जाता है। जो अवरोधक परिणाम है वो विभाव रस वाले परिणाम है जो मनुष्य जीव को अपने ओर आने में रोक लगाता है। वो रोधक परिणाम है जिसको आत्मरस के तीव्र रुचि हो उसको साथ ही साथ अपने विभाव जो उदय भाव है जिसमें विभाव होते हैं उसमें रुचि ही है स्वतः होती है अगर ऐसी भूमिका में ऐसा नहीं है तो ये रुचि है वो वास्तव में आत्मरक्षा रुचि हाँ दर्शन आत्मभावना और आत्मरुचि के दर्शन को मंद करने का यथार्थ प्रकार है। ऐसे तो दर्शन है कभी कभी यथार्थ उससे भी मंद हो जाता है तो संज्ञा में भी जैसे कि हमें सब्जी में सूर्य के प्रति बहुत भक्ति भाव रहा तो ओम संज्ञा में भी कभी मंद होता है लेकिन वो पूर्ण हो जाएगा मान आत्मरुचि है वो तो यथार्थ रूप से लक्ष्मियों को मन करने वाली चीज है। भविष्य में तो भाव पूरे भाव में रस टूट नहीं जाएगा। उसे एक एक समय का परिणाम तीव्र संचारा लगता है ये निरस्ता का कारण है। रसाल तो कंटाला नहीं होता तो निरस्ता होने तो कंटाला आ जाएगा। ऐसे में उसे लक्ष्य हाँ ये प्रश्न लक्ष्य जहाँ तक स्वरूप की पहचान में भी पदार्थ मुक्ति निर्माण नहीं हुआ वहाँ तक लक्ष्य रहता है पूर्ण सिद्धि का जो आज आत्म जागृति का पहला अंक निकला है उसमें ये आर्टिकल दिया है कि गुरुदेव का सूत्र था कि पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत होती है। मनुष्य जीव के जीवन की शुरुआत कहाँ है मनुष्य का के जीवन के पूर्णता के लक्ष्य से ही होती है ये इसका लक्ष्य है। तो जहाँ पहुँचना है परिणाम के साथ स्वतः लक्ष्य प्रति चलते रहेंगे कभी मनुष्य है परिपक्वता नहीं आई हो जितने भी प्रकाश हो कमी हो और अपने भावना आत्मभावना से विरुद्ध परिणाम हो गए तो भावना आपको बड़ी खेत पहुंचेगी। भावना एक ऐसी कोमल परिणति है कि जो अपनी विरुद्धता को बर्दाश्त नहीं कर
सकती।
यह हालत तो ये हालत इसलिए होती है कि लक्ष्य है पूर्णता का इसलिए होती है इसीलिए मनुष्य के जीव के जो परिणाम की चाल है हो सकता है खेत भी लग जाए करते करते लेकिन आइंदा सावधानी भी करते करते जैसे कि चलने वाले के साथ बॉडी गार्ड हो वैसे तो कोई भय नहीं है डर नहीं है वैसे जिसको ये लक्ष्य हो गया तो अपने चार परिणामों के लक्ष्य के प्रति સીધી બોલી તો એ લક્ષ્ય હોય કે મનુષ્ય જીવતા એક બોલી કાળ હો ગયા દોસ્તો અહીં જન્મ જગા અહીં ફસલે જગા
બરાબર जरूर देख पाए,
जरूर नहीं देखने मुमुक्षुओं का नेत्र महात्मा को पहचान लेता है। ये भी एक नेत्र है जो ज्ञान नेत्र है। तो एक ऐसी रहस्यमय चीज रही जगत में कि जो पात्रता वाले को मिलती है, बिना पात्र कोई राह नहीं है, कोई रास्ता नहीं। वाणी में बहुत से प्रकार की विशिष्टता होती है क्योंकि आत्म पदार्थ में विरुद्ध धर्मत्व ये भी इसका एक स्वरूप है। जहाँ नित्यता है वहाँ ही अनित्यता है। जिस पदार्थ में अनंत शुद्ध स्वभाव है उसकी पर्याय में मलिनता भी है। जिसमें ध्रुवत्व है उसमें अध्रुवत्व भी है। जिसमें परिणामी पड़ा है उसमें अपरिणामी पड़ा भी है। तो ऐसी बहुत सी बातें ऐसी है कि जो तगड़े तगड़े सूक्ष्म वाले को भी जन्म में डाल देते हैं, क्योंकि वहां बुद्धि की पहुंच नहीं। ये बात रही सिर्फ पदार्थ दर्शन की। जिसको पदार्थ का दर्शन हो वही ज्ञानी पुरुष इस विरुद्ध धर्म वाले पदार्थ को अविरोध वाणी से कह सकता है। इसकी वाणी में ही पुरवार पर अविरोध पड़ा हो सकता है, दूसरे की वाणी में विरोध आए बिना रहने वाला। तो ऐसा एक खास प्रकार का स्पेसिफिक सिम्टम जिसको कहेंगे हम, ये है कि सत्पुरुष की वाणी, ज्ञानी पुरुष की वाणी हमेशा हमेशा परिवार पर अवरोध होती है और ये हमेशा पुरुषार्थ द्योतक होती है, पुरुषार्थ को जागृत करने वाली होती है, आत्मार्थ को पैदा करने वाली होती है। और बहुत सी बातें हैं इसमें, थोड़ी बहुत श्रीमद राजचंद्र जी के पत्रांक 679 जिसको पढ़ना हो वहां से पढ़ लें, नोट करिए, मोटी मोटी बातें देखनी हो तो ज्ञानी की वाणी में जो पारमार्थिक आशय है, जिसका केंद्र बिंदु आत्महित है, आत्मकल्याण है, इस सर्वत्र जाते हैं, उसी को आशय कहते हैं। यहाँ कृपा मुझे आशय शब्द से बात को रखती है बहुत गंभीरता। ऐसे ये ऐसा आते ये कोई सीखने की चीज नहीं। कोई कितना भी बुद्धिमान हो ना वाणी की नकल कर सकेगा, लेकिन ये टोन जिसमें आशय हो आत्महित का, ये अंडर टोन जिसको आंतर ध्वनि कहते हैं, तो उसकी वाणी में नहीं आ सकता, कभी नहीं आएगा। दूसरा ये कहते हैं कि आत्मार्थ उपदेशक है, अपूर्व भाव का निरूपण करवा करने वाले होते हैं और उसमें अनुभव समेत पना होने से, क्या अनुभव समेत पना होने से तो आत्मा को सतत रूप से जागृत करने वाली वाणी होती है, आत्म जागृति में लाने वाली वाणी होती है। पदार्थ दर्शन होने से उसमें कहीं भी कल्पना नहीं मिलती और दूसरों को पदार्थ दर्शन नहीं होने से कल्पना जो कल्पना हुई है बिना नहीं रहती। यही डिफरेंस है जिसको डिस्टिंग्विश करना हो यहाँ से, इसको तो अंतर को समझ सकेंगे। कौन समझ सकता है, लिखा है उन्होंने कि ज्ञान और अज्ञान का भेद जिसको समझ में आया हो इसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान नहीं भाषा खरी, ज्ञान नहीं कभी चातुरी, ये पद लिखा है जी वर्ग रहे थे ज्ञान तेने हम सर्वभव्य सामर भव्य पूर्व नव भरे पण जो जीव ने जाने नहीं नवपुर मैंने अज्ञान अंग प्लस बत्ता नवपुर ग्यारह में ध्यान रखा है। नवपुर मैंने ग्यारह अंग, इससे आगे और बारह अंक नवपुर पूर्व नव भरे पण जो जीव ने जाने नहीं अज्ञान भाग्यू त्याल भी सर्वज्ञ देव ने इसको अज्ञान बोल दिया। ये सब अज्ञान है और अज्ञान में कोई भाषा की चातुरी है कवि चातुरी है ये कोई ज्ञान में आता नहीं। तो ज्ञान और अज्ञान का भेद जिसके समझ में आया हो उसे ही अज्ञानी और ज्ञानी का भेद सहज रूप से समझ में आता है। अज्ञान प्रति का जिसका मोह विराम पाप को प्राप्त हुआ है, व्यामो अज्ञान का व्यामो जिसको नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को ज्ञानी अज्ञानी के वचन भ्रांति में डाल सकते नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी के वाणी में के आशय में कितना अंतर होता है कि जितना अंतर रात और दिन में होता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो है कहनी चाहिए कि जो मार्ग को खोजता है, क्या जो मार्ग को खोजता है कि किस विधि से किस पद्धति से मेरा आत्म कल्याण हो, इसकी जहां पैनी नजर हो गई है खोजने में उसको मार्ग बताने वाला मिले और नहीं उसको पता चले ये बन सकता
नहीं।
उसको तो अंधकार में प्रकाश के लिए प्रश्न पूछना नहीं पड़ता, अंधेरे में खड़ा रहने वाले को ये प्रश्न नहीं पूछना पड़ता कि प्रकाश हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि प्रकाश स्वयं अपने आप का द्योतक है, अपने आप को प्रकाशता है। वैसे अज्ञान अंधकार में भले ही मुमुक्षु खड़ा हो किंतु वो मार्ग का खोजक हो, दूसरे कुछ बात का नहीं, मार्ग का खोजक हो पर खोजते खोजते दृष्टि पैनी हो गई हो और मार्ग का प्रकाश जिसकी वाणी में होता हो इसके लिए प्रकाश के लिए प्रश्न रहता नहीं, क्योंकि अंधेरे में प्रकाश हुआ इसको प्रकाश के लिए पूछना नहीं पड़ता कि ये प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ, उसको इतना क्लियर स्पष्टतया विशद रूप से मालूम पड़ जाता है कि मार्ग है मोक्ष का अखंड मार्ग है। इन वचनों में कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में मोक्ष को आना जरूरी है अगर उसे ज्ञानी की पहचान करनी हो तो, और बिना ज्ञानी की पहचान पहला संकेत नहीं होता, दूसरा सूत्र का विचार करने के लिए जगह नहीं है। जो पहला संकेत है या संकित होने का बीज है यानी प्रत्यक्ष कारण है तो सत्रह निगाशन में लिखा था तो यहाँ से मिलता है। क्यों कि वहां आत्म स्वभाव प्रकट हुआ है, सत्पुरुष के परिणमन में आत्म स्वभाव ज्ञान ज्योति प्रकट है और अपने आत्म स्वभाव में ज्ञान ज्योति
शक्ति रूप है, प्रगट नहीं है। प्रगट की जिसको पहचान नहीं, उसको अप्रगट की पहचान होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए पहला, किसी को भी कोई कार्य संपन्न होता है परमार्थ के प्रथम चरण में, तो ये सत्पुरुष की पहचान का होता है, बाद में सब कुछ आगे जाने का होता है, इससे पहले कुछ होता नहीं। दूसरा, भगवान आत्मा को सुनने वाला प्रभु तीर्थंकर के सम्मुख नृत्य करने वालों पर रुपयों की वार फेर करता है, क्या यह उचित है? ऐसे बातों को मैं नहीं जानता, तो बात मैं नहीं जानता उसका उत्तर मैं नहीं दे पाता। और ये प्रयोजन, ये प्रश्न हमारे प्रयोजन का नहीं है, फालतू बातों के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। पर्याय में द्रव्य नहीं आता, और पंडित जी साहब ने दूसरे को बताया क्या कि जहाँ आत्म कल्याण की चर्चाएं होती हो, वहाँ सिवा आत्म कल्याण दूसरे बातों की चर्चा करने का नहीं होना चाहिए। क्यों? कि इसके लिए बहुत जगह है, बहुत क्षेत्र है, बहुत इसके जानने वाला कहने वाला मिल जाएगा। हम तो ऐसी बात जानते ही नहीं कि ये क्या करते, कैसे करते, क्यों करते। पर्याय में द्रव्य नहीं आता, इसका क्या आशय है? कैलाश चंद्र जी गुरुदेव कहते थे कि पर्याय में द्रव्य नहीं आता, इसका मतलब द्रव्य तो और पर्यायत्व ये अलग अलग तत्व है। एक पदार्थ के तो जो पर्यायत्व है वो तो द्रव्यत्व नहीं है, इसलिए पर्यायत्व में द्रव्यत्व नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, मदद नहीं करता है, असर नहीं करता है, कुमाश नहीं डालता है, कुमाश क्या है? तो फिर परोक्ष तीर्थंकर आदि असर नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष सत्पुरुष से ज्यादा असर करते हैं, यह कैसे संभव है? ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की बातें हैं। परोक्ष निमित्त और प्रत्यक्ष निमित्त में निमित्त नैमित्तिक असर का क्या फर्क पड़ता है, अपने अनुभव से देख लेना। इसलिए तो ये सब दृष्टांत भी ऐसे सुनते, अपने अनुभव से ही देख लेना। जो परोक्ष जिस चीज को हम देखते हैं, उसी चीज को प्रत्यक्ष जब देखी होने होने का भाव नहीं होता। गर्व की कम ज्ञान वाले तो आगे होने मार्ग अपना लेते हैं, ऐसा नहीं है भैया। जो उसको सही आत्मभावना होती है उनको तो मुनि होने की भावना आए बिना रहती नहीं है। जिसको मात्र मोक्ष अभिलाष होती है, क्या मुनि हुए बिना मोक्ष होने की बात है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो ये कोई गलत धारणा है, ऐसा नहीं है। दूसरों की चर्चा हमें नहीं करनी है। दूसरा क्यों मुनि हो जाते हैं? हो जाते हैं मुझे अपने को क्या है? प्रतिभाष लक्ष्य और जानने में क्या अंतर है? शायद चले गए हैं प्रश्न पूछने वाले, उसने जो राकेश जी थे इसका प्रश्न आर किया वर्ड में, तो वे प्रतिभाष लक्ष्य और जानने में क्या अंतर है? तो तीनों एक भी हो सकते हैं, और प्रकरण वश अलग अलग भी हो सकते हैं। जहाँ भी जो कहने का अभिप्राय है वहाँ समझना चाहिए। एक अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है तीनों शब्दों का, और अनेक अर्थ में भी प्रकरण इसका अर्थ होता है। पर को जानना पाप और मिथ्यात्व कहा जाता है, वह क्या सत्य है? नहीं, वो सत्य नहीं है, न वो पाप है न मिथ्यात्व भी है। पर स्वतः प्रकाशक ज्ञान में जाना जाता है, और अगर ऐसा होता तो केवल भगवान को सबसे ज्यादा पाप और सबसे ज्यादा मिथ्यात्व जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सामान्य उपयोग में जो आत्मा जानने में आता है वह किस प्रकार से आता है, प्रतिभास रूप से या जानने रूप, ये शायद इसका ही प्रश्न है जो काफी से चलेगा। तो अपने को सामान्य तौर से इसकी चर्चा करने तो जो सामान्य उपयोग में जो जानने में आता है ऐसा नहीं लेगा, वेदन में आता है, इसलिए वो वेदन पूर्वक जानने की बात है। और जानना कहो प्रतिभास कहो लक्ष्य कहो, तीनों बात वहाँ एक रूप में। मैं आत्मा को जानता हूँ या कि मैं आत्मा हूँ, इन दोनों में से कौन सी शैली है? मैं आत्मा को जानता हूँ या कि मैं आत्मा हूँ, ये तो भाव पर निर्भर है, शब्द से कोई झगड़ा नहीं करना है, शैली से हमें कोई टकराव नहीं है। शैली कुछ भी हो, भाव में ज्ञान में समझदारी क्या है उस पर इसकी यथार्थता का आधार है, और यह यथार्थता का आधार है। जब जीव उपशम श्रेणी से ऊपर चढ़ता तो क्या वे गुणस्थान 11वें गुणस्थान से नीचे गिर जाता है, और नीचे 7वें गुणस्थान से क्या फिर क्षपक श्रेणी में चढ़ सकता है? हाँ चढ़ सकता है, भी नहीं जाए क्षपक श्रेणी से उतर कर 7वें आता है, फिर उस क्षपक श्रेणी में आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी होता है और होता भी है। लक्ष्य किस गुण के पर्याय है? ज्ञान गुण के। स्वरूप की महिमा का क्या माध्यम है? कोई माध्यम नहीं है, ये डायरेक्ट स्वरूप ज्ञान में प्रत्यक्ष तौर से आने से ही महिमा होती है, उसमें बीच में कोई माध्यम नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मानना महामिथ्यात्व का प्रकार है। इंद्रिय ज्ञान को सम्यक ज्ञान या अतिंद्रिय ज्ञान मानना वही मिथ्यात्व है, लेकिन उसका एकांत ऐसा नहीं है कि साधक को इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। साधक दशा में अतिंद्रिय ज्ञान भी होता है, और इंद्रिय ज्ञान पूर्वक कुछ व्यवहार जो भी होता है उस ज्ञान को वो ज्ञान का विभाव समझता है। इंद्रिय ज्ञान है तो ज्ञान का एक विभाव है, ऐसा ज्ञान स्वभाव नहीं है, उतनी बात लेनी चाहिए। कारण शुद्ध पर्याय क्या है? निर्विकल्प दशा में इसकी क्या भूमिका है? तो बुद्धपुर को काफी चर्चा इस विषय पर चल चुकी है कि निर्विकल्प दशा में एक आधार की भूमिका है, यही इसकी भूमिका है, और ये साक्षात कारण है कार्य शुद्धि का। हमारे विषय दोपहर को तो चला था, लेकिन ये धारणा का विषय नहीं बनाना चाहिए, इसलिए इस विषय को खोलने का मन नहीं हो रहा है। यही कारण है इसके पीछे कि एक साक्षात अनुभव के काल में होने वाला अनुभव की योग्यता की चरम सीमा को प्राप्त जीव का परिणाम है, प्रायोगिक परिणाम। उस भूमिका के पहले वाले प्रयोग में भी आए बिना, यानी प्रयोग की लाइन शुरू हुए बिना, जो भी सभी विषयों को ज्ञान की धारणा में लेने की जो आदत हो गई है, एक नुकसान वाले समझने की कार्य पद्धति। मैंने पारमार्थिक कहीं बातें और सैद्धांतिक कहीं बातें, बहुत सी कुछ बात समझने के बाद समझने योग्य है और समझनी चाहिए, ऐसा समझ का क्रम हम छोड़ देंगे तो हमें नुकसान होने वाला है। इसलिए ऐसी बातों को सिर्फ धारणा में लेने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं, और विषय उतना सूक्ष्म है कि जो मुमुक्षु इस प्रयोग के लाइन में आए न हो उसको ये बुद्धि कृत्य होने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी तगड़ी बुद्धि हो, तगड़ा क्षण नहीं हो। तो इसके लिए तो ये काम की चीज नहीं होगी, और ये आम जनता की तो काम की है ही भी नहीं। इसलिए अगर कोई प्रयोग पद्धति में आए हो तो पर्सनल हमें मिलेंगे तो चर्चा कर लेंगे इसके साथ, लेकिन इसके पहले वो करने लायक नहीं है, ऐसा ऐसी मेरी समझ है। क्या सम्यक दृष्टि जीव को आत्मदाह का परिणाम आ सकता है? आत्मदाह नहीं है क्या? आत्मदाह किसे कहते हैं? प्रश्न पूछने वाले को
अग्नि में प्रवेश करते
हैं। आत्महत्या की बात है,
आत्महत्या
जिसका प्रश्न है वो खुला सर
घाट बताया। आत्मधाम में आत्महत्या कुछ आत्महत्या का वैसे तो आत्महत्या का परिणाम दर्शनपूर्वक तो नहीं आता, दर्शनपूर्वक तो जैसे परिणाम नहीं होते थे, तो सम्यक दृष्टि है ना, इसलिए दर्शन हो तो उसको होता नहीं। चार क्रमों की बात हो गए तो इससे तो कोई मतलब है, उससे तो मतलब नहीं।
राजा सैनिक हुआ
मान जानता हूँ, यही आर्ग्यूमेंट तो वही आएगी, इसलिए मैंने प्रोविजनल आंसर दिया है कि दर्शनों के साथ नहीं आता, चारित्रमों के साथ आए तो आए, इससे हो सकता है चतुर्थ गुण स्थान में तो अविरत सम्यक दृष्टि है,
मतलब वो चातुर्मोह का कार्य है, दर्शनों का कार्य
नहीं, दर्शनों का कार्य नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि सम्यक दृष्टि को सप्त दर्शन नहीं होगा, बताएगा सम्यक दृष्टि को सात प्रकार के व्यसन नहीं होता, चोरी जुगाड़ दारू परस्त्री आदि जो है आर्गुमेंट आएगी। युधिष्ठिर को कैसे थे धर्मराजा कहा गया है, शायद सम्यक दृष्टि चरम शरीरी, और जुगाड़ में द्रौपदी को हारा, कितने किसको अपनी पत्नी, लेकिन व्यसन नहीं होता। क्या व्यसन होता है वो दर्शन होता है, व्यसन नहीं था, खेल खेल लिया, खेल तो खेला लेकिन दर्शन वो पूर्वक नहीं खेला, दर्शन वो व्यसन रूप में होता है, व्यसन इसको कहते हैं।
अगर दर्शन वो पूर्वक खेले तो क्या फर्क
पड़ेगा? दर्शन मोह में वासना हो जाती है, वासना में बार बार स्वतः उत्पन्न हो जाए बिना विकल्प बिना पूर्व तैयार, दर्शन मोह में। चारित्र मोह में वासना नहीं होती, आसक्ति होती है, वासना नहीं होती, अंतर नहीं। क्या हो गया? क्या सम्यक दृष्टि जीव को आत्मदाह हुआ? क्या राजा श्रेणी को आत्मदाह कोई बात है क्या आया था वही बात है कार्यक्रमों की बात है दर्शन की बात नहीं समझा नियम सार की दसवीं गाथा में सामान्य ज्ञान स्वरूप प्रतिष्ठान था और द्रव्य गुण पर्याय में से क्या है इसकी राकेश इकाई प्रश्न सब पहुँचाए हैं और यदि पर्याय है तो वो कौन से पर्याय पर्याय नहीं है शैल ज्ञान है वो त्रिकाली स्वभाव है और इस प्रकार के वर्तमान लेना है वहाँ ज्ञान गुण का त्रिकालिक वर्तमान लेना है आखिरी पर्चा है जबकि संपूर्ण वस्तु उत्पाद वही द्रव्यात्मक है तो मात्र द्रव्य दृष्टि अर्थात द्रव्य दृष्टि का ही उपदेश क्यों दिया है इस प्रकार को अधूरा द्रव्य ही दृष्टि का विषय बनेगा कृपया समाधान ऐसा नहीं है कि त्रिकाली द्रव्य स्वभाव अपूर्ण है भाई जी ने सुबह के अपने प्रवचन में ये बात कही थी अपूर्ण मादन अपूर्ण शब्द से लिया है अनादि से पूर्ण है जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव है तो अनादि से परिपूर्ण है एक समय की विकारी पर्याय साथ में रहे तो पूर्ण और साथ में नहीं रहे तो अपूर्ण ऐसा द्रव्य नहीं है द्रव्य का ऐसा स्वरूप नहीं है द्रव्य गुण पर्याय में विकारी पर्याय है संसारी जीव की और दृष्टि का विषय तो त्रिकाली शुद्ध परिपूर्ण द्रव्य है द्रव्य स्वभाव परिपूर्ण है उतना ही नहीं अपूर्ण का अर्थ क्या सर्वांग संपूर्ण है पूर्ण है उतना ही नहीं लेकिन लेकिन सर्वांग परिपूर्ण है इसलिए एक समय की पर्याय में जो विकार होता है संसार दशा में इससे उसकी पूर्णता गिनो वरना उसको अपूर्ण गिनो ऐसी बात गिनती की भी बराबर नहीं जिसको द्रव्य स्वभाव का की समझ हो उसको तो वो बात का प्रश्न नहीं उठता है कि एक पर्याय साथ में क्यों नहीं एक समय के क्यों कि हमें परिणामों को अस्थिरता में से स्थिरता में लाना है या अस्थिरता को बढ़ाना है क्या करना है वैसे ही अनादि से परिणामों की चंचलता तो बनी रही है अभी उसको वृद्धिगत करना है या उसको स्थिर करना है अवलंबन का विषय दृष्टि का विषय मैंने अवलंबन का जो विषय है ये तो ध्रुव ही है और ध्रुव ही होना चाहिए तो अध्रुव होगा तो परिणाम में चंचलता बढ़ेगी या घटेगी क्या होगा घड़ी का पेंडुलम होता है इधर से उधर जाता है अब आपके जो नेत्र की दृष्टि स्थिर रखनी हो त्राटक करना हो तो क्या पेंडुलम को देखने से लोलक को देखने से स्थिर होगी दृष्टि क्या आप तो घुमानी पड़ेगी दृष्टि ऐसा ऐसा स्थिर चीज पर दृष्टि रखने से दृष्टि स्थिर होगी अस्थिर तत्व को दृष्टि रखने से परिणाम में अस्थिरता होगी जैसे हमारी दृष्टि परिणामों पर है पर्याय दृष्टि पर्याय मुंडपना है
जी।
तो क्या हो रहा है कि दुख हो रहा है जिन क्यों दुखी कि चलित तत्व को पर दृष्टि रखता है पर अचलित तत्व पर दृष्टि नहीं रखता है यही तो दुख का कारण है जैसे रखने से मन नहीं चाहते पर ये देह अस्थिर है उसमें हमने स्थिरता की प्रतीति कर ली देह स्थिर रहना चाहिए कि क्यों स्थिर नहीं रह रहे ये विश्वास है उसमें धोखा खाते हैं दुख होता है इसलिए दृष्टि का विषय जो ध्रुव है वही सम्यक है, वही उचित है। प्रमाण का विषय भूत जो द्रव्य है वो तो दृष्टि का विषय बन सकता नहीं है।